अरुणिमा नीचे आती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अरुणिमा और जानवी सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। भले ही अरुणिमा को कॉलेज जाना था, लेकिन फिर भी ये उसका काम था। हालांकि जानवी ने उसे कहा था कि वो अकेले कर लेगी, लेकिन अरुणिमा जानवी को अकेले काम नहीं करने देना चाहती थी। वो जानवी के साथ मिलकर सबको ब्रेकफास्ट करवाती और उसके बाद ही अपना ब्रेकफास्ट करके वो कॉलेज जाया करती थी। सब लोग ब्रेकफास्ट करके निकल चुके थे। कीर्ति कहती है, अरुणिमा थोड़ा जल्दी करना, आज मेरा असाइनमेंट सबमिट होना है। अरुणिमा हाँ में सर हिलाती है। कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है और अरुणिमा के काम खत्म होने का इंतजार करती है ताकि वो दोनों कॉलेज के लिए निकल सके। अरुणिमा और जानवी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। एक सर्वेंट उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। अरुणिमा धीरे धीरे करके खा रही थी। जानवी ये बहुत अच्छी तरह से नोट कर रही थी। उसने अरुणिमा से पूछा, क्या बात है भाभी, सब ठीक तो है ना? अरुणिमा ने जानवी को देखते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जानवी ने हैरानी से अरुणिमा को देखा और फिर वो उससे कहती है, भाभी अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप उल्टे हाथ से क्यों खा रही हैं? जानवी की बात सुनकर अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से अपने उल्टे हाथ को धीरे से प्लेट से पीछे खींचती और कहती है, नहीं वो जल्दी जल्दी में ना ध्यान नहीं रहा। अरुणिमा अपना सीधा हाथ आगे करने की कोशिश करती है। जानवी देखती है अरुणिमा के सीधे हाथ पर दवाई लगी हुई है। जानवी अरुणिमा के हाथ को पकड़ लेती और कहती है, भाभी ये आपके हाथ पर चोट कैसी लग गई है? अरुणिमा डर जाती है क्योंकि अब तक वो जानवी को इतना तो जान ही गई थी कि जब तक वो सारी बात नहीं सुन लेगी तब तक वो अरुणिमा का पीछा नहीं छोड़ेगी, और अगर अरुणिमा ने झूठ बोलने की कोशिश की तो जानवी को एक मिनट नहीं लगेगी उसका झूठ पकड़ने में। अरुणिमा ने अपने हाथों को पीछे किया और कहा, वो रात में लैम्प पर हाथ लग गया था। लैम्प का कांच गर्म था और हाथ लगने की वजह से वो जमीन पर गिर गया, बस इसलिए हाथ पे थोड़े से छाले पड़ गए। जानवी अरुणिमा का हाथ पकड़ती और अपने पास लेते हुए कहती है, अरे भाभी ये थोड़े से छाले हैं, देखिए कितना लाल हो रखा है, रुकिए मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। लेकिन अरुणिमा जानवी को रोकते हुए कहती है, जानवी रुको, देखो दवाई मैंने लगा रखी है इस पर और अब इसमें दर्द नहीं हो रहा है, दो दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अरुणिमा और कीर्ति कॉलेज जा चुके थे, लेकिन जानवी की नज़रों में अभी भी अरुणिमा का वो जख्म खटक रहा था। उसने अपने मन में सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाभी मुझसे कुछ छुपा रही हैं? उनकी जबान और उनकी आंखें आपस में मेल नहीं खा रही थीं। ऐसा लग रहा है कि उनकी जबान में कुछ और है लेकिन वो बोलना कुछ और चाहती हैं। जानवी यह सब सोच ही रही थी कि एक नौकर वहां आता और कहता है, छोटी मालकिन मुझे सारे कमरों की बेडशीट चेंज करनी है, लेकिन रानी साहिबा तो यहां से जा चुकी हैं और हम में से किसी को भी राजा साहब के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है। जानवी उसे नौकर के हाथ से वो बेडशीट लेती और कहती है, ठीक है तुम बाकी कमरों की बेडशीट चेंज कर दो, मैं इसे भाभी के कमरे में रख कर आती हूँ, जब वो आएंगी तो चेंज कर लेंगी। जानवी बेडशीट लेकर आस्तिक और अरुणिमा के कमरे में जाती है। वो अरुणिमा के कमरे में जाकर उस बेडशीट को सोफे पर रख देती है। जानवी वहां से वापस जाने के लिए मुड़ती ही है कि तभी उसकी नज़र बेड के साइड टेबल पर रखे हुए लैम्प पर जाती है। जानवी की आंखें छोटी हो जाती हैं क्योंकि दोनों साइड दोनों लैम्प सही सलामत रखे हुए थे, ना तो वो टूटे थे और न ही जमीन पर गिरे थे। जानवी हैरानी से लैम्प को देखते हुए कहती है, भाभी ने तो कहा था कि उनके हाथ लैम्प पर लगने की वजह से लैम्प गिर गया और उनके हाथ पर छाले हो गए हैं, लेकिन ये दोनों लैम्प तो सही सलामत है तो फिर भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? जानवी ये सोचती हुई कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी बातें ही घूम रही थी। अरुणिमा का आज अजीब तरीके से बिहेव करना, उसने देखा डाइनिंग टेबल पर जब वो दोनों सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी तो अरुणिमा सिर्फ आस्तिक के बगल में ही खड़ी थी, और जानवी ने इस बात को भी नोटिस किया था कि सबके ब्रेकफास्ट करने के जाने के बाद अरुणिमा जब अपनी जगह पर बैठी है तो उसे चलने में कितनी तकलीफ हो रही थी, और अरुणिमा की नेचुरल ब्यूटी ही बहुत खूबसूरत है। जानवी ने उसे आखिरी बार से प्रणाली की शादी पर मेकअप करते हुए देखा था, लेकिन आज तो ना ही कोई त्यौहार है और ना ही कोई फंक्शन, तो फिर आज अरुणिमा ने अपने चेहरे पर इतना मोटा फाउंडेशन क्यों लगाया था? जानवी ये सारी बातें अपने दिमाग में ही सोच रही थी। सवाल बहुत सारे थे और जवाब उसे पता नहीं थे, लेकिन उसने सोच लिया था कि अरुणिमा जैसे ही कॉलेज से घर आती है वो सीधे सीधे उससे सवाल कर लेगी। शारदा जी का घर। मिश्री और रजत इस समय शारदा जी के घर पर ही थे। जब मिश्री ने रजत को मदद के लिए बुलाया तो वो उनके घर पर आता है, पर शारदा जी की हालत देखकर वो भी डर जाता है। उसने बहुत मुश्किल से शारदा जी को संभाला था। रजत ने शारदा जी को नींद की गोली दी थी जिससे कि वो कुछ देर तक सो सके। इस समय शारदा जी नींद की गोली के असर से सोई हुई थी, लेकिन मिश्री को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात अपनी माँ की चिंता में जाग रही थी। वो रोते हुए रजत से कहती है, रजत भैया हमारी ऐसी हालत कैसी हो गई है, और अरुणिमा दीदी वो तो हमसे मिलने भी नहीं आती हैं। रजत गहरी सांस छोड़ता और कहता है, तुम परेशान मत हो मिश्री, मैं हूं ना यहाँ पर तुम लोगों के पास। देखो ज्योति भी इस समय दिल्ली में है और मैं भी यहाँ पर अकेला हूँ। मेरी मानो तो तुम आंटी को लेकर मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। जहां तक बात रही अरुणिमा की तो मैं जल्द से जल्द उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। मिश्री परेशान हो जाती है, एक तो उसकी पढ़ाई छूट गई थी, ऊपर से शारदा जी की दिन ब दिन बिगड़ती हालत उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। मिश्री अपनी कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। मिश्री देखती है कि उसकी मालकिन का फोन है जिसके घर में वो काम करती है। वो फोन उठाकर अपनी शादी सिचुएशन बताती है, लेकिन सामने से उसकी मालकिन भड़कते हुए कहती है ऐसी लड़की की उसे जरूरत नहीं है जो छोटी छोटी बातों पर छुट्टियां लेती रहे। मिश्री की नौकरी चली गई थी, अब उनका एकमात्र सहारा सिर्फ रजत ही रह गया था। अगर मिश्री रजत की मदद नहीं लेती तो शायद वो अकेली रह जाएगी और अकेले वो शारदा जी की देखभाल नहीं कर सकती है, इसलिए मिश्री ने शारदा जी को लेकर रजत के घर में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था।